तकफीरी आतंकवाद।
श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वाति और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। आज हम सलफी विचारधारा द्वारा बुद्धि को खारिज करने और इस्लाम के अन्य मतों के अनुयायियों के साथ उनके मतभेदों की चर्चा करेंगे।
पिछले कार्यक्रम में हमने तकफीरी आतंकवादी गुट दाइश और इसी तरह के अन्य गुटों के गठन और उनके कुछ मूल सिद्धांतों को उल्लेख करते हुए इसकी आलोचना की थी। सलफियों का एक मूल सिद्धांत आयतों और रिवायतों के समझने में बुद्धि की भूमिका को रद्द करना है। सलफियों या तकफीरियों के निकट बुद्धि का कोई स्थान नहीं है। उनका मानना है कि कुरान और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आचरण में धर्म के पूर्ण सिद्धांत मौजूद हैं और इन्हें समझने और उनका पालन करने के लिए बुद्धि की कोई ज़रूरत नहीं है।
दाइश जैसे तकफीरी गुट इस विचारधारा के कारण शरीयत के आदेशों की प्राप्ति और उनकी जानकारी के लिए बुद्धि को कोई महत्व नहीं देते। यह ऐसी स्थिति में है जब कुरान निरंतर इंसान से ज्ञान प्राप्ति, चिंतन मनन करने और बुद्धि से काम लेने का आह्वान कर रहा है। पैगंबर इस्लाम पर नाजिल होने वाली सबसे पहली आयत में पढ़ाई, कलम और ज्ञान का उल्लेख किया गया। यह इस्लाम के लिए गौरव की बात है कि यह धर्म, ज्ञान, संस्कृति, चिंतन और जानकारी को विशेष महत्व देता है। जानकारी प्राप्त करने की शैली के दृष्टिगत तकफीरी सलफियों का मानना है कि हमारे पूर्वजों की समझ सर्वश्रेष्ठ थी और हमें उन्हीं की समझ का अनुसरण करना चाहिए। इसलिए कि हमारे पूर्वजों की समझ शुद्ध थी, उसके अलावा किसी भी समझ का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है, बल्कि वह इंसान को सही रास्ते से भटकाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से सलफ शब्द का इस्तेमाल इब्ने तैमिया से पहले उनके सामान्य अर्थ पूर्वज के लिए होता था, लेकिन इब्ने तैमिया ने इसके लिए एक नई परिभाषा गढ़ी। इसके बाद मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब ने इसे अन्य मतों के अनुयायी मुसलमानों को काफिर कहने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि सलफ से अभिप्राय अच्छे और नेक पूर्वज हैं जिन्होंने इस्लाम के उदय के बाद 3 शताब्दियों के भीतर जीवन व्यतीत किया। इस परिभाषा का स्रोत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है जिसे सही बुखारी, सही मुस्लिम और इब्ने मसूद जैसी पुस्तकों ने जिक्र किया है। सर्वश्रेष्ठ लोग मेरी शताब्दी के लोग हैं, उसके बाद वे लोग जो इनके बाद आएंगे, उनके बाद ऐसे लोग आएंगे कि उनमें से प्रत्येक की गवाही उनकी कसम और उनकी कसम उनकी गवाही के विपरीत होगी।
इब्ने तैमिया और उनके अनुयायियों ने इस हदीस के आधार पर इस्लाम की पहली 3 शताब्दियों को सही और गलत के लिए मापदंड मान लिया। जो कुछ इस अवधि में किया गया या पूर्वजों ने व्यावहारिक रूप से उसकी पुष्टि की है, वे उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। इसीलिए सलफीवाद का अर्थ पैगंबर इस्लाम के साथियों और उनके बाद आने वालों और 2री एवं 3री हिजरी शताब्दी के हदीस के विद्वानों का अनुसरण है। परिणामस्वरूप यह मत केवल कुरान और आयतों के जाहिरी अर्थ को पर्याप्त मानता है और उसकी व्याख्या में विश्वास नहीं रखता। सामाजिक दृष्टि से यह विचारधारा तकफीरी और चरमपंथी गुटों के जन्म लेने का कारण बनी जो अन्य इस्लामी मतों को गलत मानते हैं।
सलफीवाद का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य खिलाफत की पुनः स्थापना करना है। वो इसके अलावा किसी भी शासन को पूर्ण रूप से गलत मानता है और उन्हें बदलने पर बल देता है। इस आधार पर आज की समस्त संस्थाएं और शासन गैर इस्लामी हैं जिनका इनकार किया जाना चाहिए। इस सलफीवाद के कारण ही आज दाइश भी पूर्वजों के अनुसरण का दावा करते हुए अपने अपराधों को सही ठहरा रहा है। सलफीवाद की कई आयामों से आलोचना की जा सकती है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सलफियों द्वारा अपनी बात प्रमाणित करने के लिए आधार बनाने के बारे में कि सर्वश्रेष्ठ शताब्दी मेरी शताब्दी है, कुछ ध्यान योग्य बिंदु हैं। खैरुल कुरून की व्याख्या 300 साल के रूप में करने का कोई आधार नहीं है और ये इस हदीस की गलत व्याख्या है, इसलिए कि अरबी भाषा में कर्न या शताब्दी का अर्थ वर्तमान के विपरीत 100 साल नहीं है, बल्कि उसका अर्थ ऐसी जनसंख्या है जो एक समय में जीवन व्यतीत करती हो और उसके बाद दूसरे लोग उनका स्थान ले लेते हों। कुरान ने भी इस शब्द को इसी अर्थ में प्रयोग किया है। कुरून शब्द कुरान मजीद में 7 बार इस्तेमाल हुआ है और उसका अर्थ 100 साल नहीं है।
अहले सुन्नत के निकट इब्ने हजर अस्कलानी सबसे बड़े विद्वान हैं। वे इतिहास, हदीस और हदीस से संबंधित अन्य विषयों में विशेषज्ञ समझे जाते हैं। हाफिज जलालुद्दीन सुयूती इब्ने हजर अस्कलानी का इस तरह से परिचय कराते हैं, वे इमाम और हाफिज थे, अपने समय के सर्वश्रेष्ठ काजी थे, पूरी दुनिया से हदीस के ज्ञान के प्यासे उनके प्यास बुझाने पहुँचते थे। इब्ने हजर अस्कलानी ने खैरुल कुरान की व्याख्या में कर्ण की लोगों के रूप में परिभाषा की है। हालांकि अगर पहली 3 हिजरी शताब्दियों को ही इसमें शामिल कर लें तो यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि उन 3ों शताब्दियों को किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ करार दिया जा सकता है, जबकि अहले हदीस जिन चीज़ों को बिदअत अर्थात धर्म में किसी गलत नई परंपरा की शुरुआत कहते हैं, वह इसी 1 शताब्दी या उससे कुछ अधिक समय में प्रचलित हुई है। खवारिज और अन्य कई मतों ने इसी काल में जन्म लिया। हालांकि यहाँ कहा जा सकता है कि पूर्वजों की समझ को सर्वश्रेष्ठ मानना और उसे वास्तविकता तक पहुँचाने के लिए एकमात्र मार्ग करार देना खुद एक बिदत है। दूसरे यह कि खुद उन्होंने पूर्वजों की बातों में अपनी बातों को शामिल कर दिया है और उन्हें पूर्वजों के विश्वासों के रूप में इस्लामी जगत में पेश कर रहे हैं।
अनेकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, इबादत और सलफ की उनकी परिभाषा का पूर्वजों के विश्वासों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये सलफियों के जहन की उपज है जिसकी विरोधियों ने खूब आलोचना की है। इस संदर्भ में वरिष्ठ सुन्नी विद्वान रमज़ानुल बूती की किताब सलफीवाद बिदअत या मजहब की ओर संकेत किया जा सकता है। वे कहते हैं कि सलफीवाद तो खुद बिदअत है और इस्लामी समाज के लिए घातक है, इसलिए कि इसने धार्मिक विषयों में बुद्धि और ज्ञान की भूमिका को नकार दिया है और इस्लाम के विस्तार में रुकावट बन गया है।
सलफीवाद केवल पूर्वजों को आधार बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से यह पूर्वजों के हर आचरण और व्यवहार को धार्मिक आदर्श का नाम देकर आज के लिए आदर्श बनाना चाहता है और सोचने और चिंतन करने पर पाबंदी लगाता है। लेकिन यहाँ यह सवाल उठता है कि पूर्वजों के अनुसरण से सलफियों का तात्पर्य क्या है। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों में उनके प्रत्येक व्यवहार और बात का अनुसरण। इस संदर्भ में सुन्नी मुसलमानों के एक वरिष्ठ विद्वान अबू हामिद गजाली का मानना है कि जो कुछ पैगंबर इस्लाम से हम तक पहुँचा, हमने उसे सिर आँखों पर रखा। जो कुछ उनके साथियों से हम तक पहुंचा, उसमें से कुछ हमने लिया और कुछ छोड़ दिया, लेकिन जो कुछ उनके बाद आने वालों से हम तक पहुंचा, तो जान लो कि वे भी इंसान थे और हम भी इंसान हैं।
सुन्नी मुसलमानों और सलफियों के बीच सबसे पहला अंतर पूर्वजों और अनुसरण की सीमा के निर्धारण में है। सलफियों ने सुन्नी इस्लाम के समस्त सीमाओं का उल्लंघन करते हुए नया दृष्टिकोण पेश किया। सलफ या पूर्वजों का शिया इस्लाम में भी महत्व है, लेकिन शिया प्रत्येक सलफ को आदर्श नहीं मानते। सुन्नी मुसलमानों के विपरीत, जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के समस्त साथियों को न्याय करने वाला और अच्छा मानते हैं और आंखें बंद करके बिना किसी तर्क के उनका अनुसरण करते हैं, शिया मुसलमान कुरान के आधार पर और पैगंबर इस्लाम के साथियों के बीच होने वाली लड़ाइयों के आधार पर उनके बीच चयन करते हैं। इसी प्रकार कुरान की कई आयतों में कुछ साथियों की उनके व्यवहार के कारण निंदा की गई है। इसी कारण पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के बाद आने वाले लोगों की बात तो दूर, खुद उनके समस्त साथियों को आदिल या धर्मपरायण नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार शिया मुसलमान केवल उन साथियों को जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिजनों में शामिल हैं और ख़ुद पैगंबर इस्लाम और कुरान ने उनके अनुसरण का आदेश दिया है, अनुसरण के योग्य मानते हैं। शिया मुसलमान पैगंबर इस्लाम के उन साथियों को भी विश्वसनीय और अनुकरणीय मानते हैं जिन्होंने किसी पर अत्याचार नहीं किया और कुरान तथा पैगंबर इस्लाम की शिक्षाओं पर अमल करते रहे।